તારીખ 14/3/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 679 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 104
ઇત્યાદિ નાના પ્રકાર કે ભેદ છે જ્ઞાની ઓર અજ્ઞાની કી વાણી કી પહેચાન ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુ કો હોને યોગ્ય હૈ જો ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષુ હૈ ઉનકો જ્ઞાની ઓર અજ્ઞાની કી વાણી મેં ક્યા અંતર હૈ વો સમજ મેં આ સકતા હૈ જ્ઞાની પુરુષ કો તો ઉસકી પહેચાન સહજ સ્વભાવ સે હોતી હૈ ઓર જો જ્ઞાની હોતે હૈ ઉનકો તો એસી વાણી કી પહેચાન સહેજ સ્વભાવ સે હોતી હૈ ક્યોંકિ ઉનકા તો પરિણમન હી હૈ ઉનકો તો પરિણમન અનુસાર વાણી સહેજ સ્વભાવ સે સમજ મેં આ જાતી હૈ ક્યોંકિ સ્વયં ભાન સહિત હૈ વો અપના આત્મ સ્વરૂપ કે ભાન મેં હૈ તો જો ભાન મેં બોલતે હૈ ઉનકો પતા ચલતા હૈ કે વો અપને બરાબર ભાન મેં હૈ જૈસે કે કોઈ પાગલ હોતા હૈ ઉસકો અપના ભાન નહીં રહેતા હૈ કે મેં ક્યા હું ઓર મુજે ક્યા બોલના ચાહિએ ઓર નહીં બોલના ચાહિએ क्योंकि उनको अपना खुद का भान नहीं है। वैसे ज्ञान दशा में आत्मस्वरूप का भान नहीं है और ज्ञान दशा में आत्मस्वरूप का भान है। तो जो स्वयं भान सहित है वो दूसरा भान सहित बोलता है उनको समझ लेता है कि भान में बोलता है, और ऐसा ही कोई बिना भान बोलता है तो पहचान लेता है કે બોલતા હૈ એસા હી લેકિન ભાન નહીં હૈ, ખુદ કો ભાન નહીં હૈ ઇસકા, ઉસકા ભાન કહીં હૈ બોલતા હૈ કુછ ઓર બોલતા હૈ। એસા એક દૃષ્ટાંત સમ્યક જ્ઞાન દીપિકા મેં ધર્મદાસજી ક્ષુલ્લક ને દિયા હૈ। એસા એક દૃષ્ટાંત આતા હૈ। रात्रि को एक चोर किसी के घर में चोरी कर रहा था। रात्रि को कुत्ता ने देखा, कुत्ता भसने लगा। चोर को देख के जो कुत्ता भसता है वो दूसरा कुत्ता समझ जाता है कि ये जो भसता है वो किसी चोर को देख के भसता है, तो दूसरा भी ऐसे ही भसने लगा जैसे कि दूसरे जो लोग हैं वो जग जाए, सोए हुए लोग जग जाए, उस प्रकार से वो भसता है। एक भसने की खास परिस्थिति होती है कि चोर को देख के भसना। अब जो कुत्ता चोर को देख के भसता है, और ऐसा ही जो बिना देख के भसता है एक सा, लेकिन दोनों में फर्क है, क्योंकि एक ने प्रत्यक्ष चोर को देखा है और दूसरा कुत्ता ने भसता हुआ कुत्ता को सुन करके वो भसता है। ऐसे एक आत्मा को देख करके बोलता है और दूसरा ऐसा सुन करके बोलता है, दोनों में अंतर पड़ जाता है। क्योंकि स्वयं भान सहित है, यानी पुरुष तो आत्म भान में है, और भान सहित पुरुष के बिना इस प्रकार के आशय का उपदेश नहीं दिया जा सकता, ऐसा सहज हो वे जानते हैं। भान सहित पुरुष के बिना इस प्रकार के आशय का उपदेश नहीं दिया जा सकता। हर बात में आत्मकल्याण का जो आशय है वो सभी बात में केंद्र स्थान में रहता है, और वो आशय का उपदेश, जो आत्मकल्याण स्वयं साध रहे हैं, उसकी वाणी में बराबर आता रहता है। और जो खुद ही आत्मकल्याण को नहीं साधता है, जो राग को साधता है, एक आत्मा को साधता है और एक किसी न किसी प्रकार के राग को साधता है, तो जो जिसका साधन करता है उसके उसी प्रकार की उसकी वाणी आएगी। जैसे कि जिसकी दुकान में जो माल है वो बेचेगा, सब्जी तरकारी वाला वेजिटेबल मार्केट में हीरा जवाहरात का सब्जी तरकारी वाला जो है वो सब्जी तरकारी बेचेगा, वो हीरा का दागिना कहाँ से बेचेगा? वो तो नहीं बनेगा इससे, क्योंकि उसके पास है नहीं, कहाँ से बेचेगा। इस तरह से भान सहित पुरुष के बिना इस प्रकार के आशय का उपदेश नहीं दिया जा सकता। जो भान सहित उपदेश देता है उसका प्रकार अलग है, जो बेभान है और उपदेश देता है इसका प्रकार अलग होता है। ऐसा सहज ही वे मैंने ज्ञानी जानते हैं, जिसे और एक बात करते हैं कि जिसे अज्ञान और ज्ञान का भेद समझ में आया है उसे अज्ञानी और ज्ञानी का भेद सहज में समझ में आ सकता है। कहाँ से आता है समझ में? कि जिसे अज्ञान और ज्ञान का भेद समझ में आया है। अज्ञान किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं? यहाँ ज्ञान मैंने आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मैंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जिसको आत्मा का ज्ञान कैसा होता है वो समझ में आया, और ऐसा ज्ञान नहीं होता तो अज्ञान कैसे होता है वो समझ में आया, उसको उस ज्ञान के धारण करने वाला ज्ञानी भी समझ में आता है, और उस ज्ञान नहीं धारण करते हैं ऐसे अज्ञानी भी समझ में आता है। ज्ञानी अज्ञानी की पहचान कहाँ से होती है? कि इनके ज्ञान से होती है, दूसरा तो कोई इनके पास साधन नहीं है। क्योंकि ज्ञानी को भी अज्ञान दशा में जो कर्म बंद किए उसी का ही उदय आता रहता है। ज्ञानी होने के बाद उसको कर्म का उदय कैसा होता है? कि अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म का उदय उनको आता है, और अज्ञानी को भी अज्ञान दशा में बांधे हुए कर्म का उदय आता है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी का उदय समान रहता है प्रायः। तो उदय और उदय भाव से ज्ञानी अज्ञानी की पहचान नहीं हो सकती। ज्ञानी की पहचान ज्ञानी के ज्ञान से होती है। तो ज्ञान और अज्ञान किसे कहते हैं? वो जिसकी समझ में है वो ज्ञानी अज्ञानी को पहचानेगा। यहां ज्ञान मैंने अनुभव ज्ञान लेना है, क्योंकि आत्मज्ञान की भी परिभाषा शास्त्र में है, आत्मज्ञान की अनेक प्रकार की बातें भी शास्त्र में है, और शास्त्र पढ़कर कोई भी वो बोल सकता है, जो विद्वान होता है वो बोल सकता है। लेकिन इसके साथ अनुभव है कि नहीं है, वो अनुभव का ज्ञान को यहाँ ज्ञान कहते हैं, शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। इसलिए कहा कि जिसे अज्ञान और ज्ञान का भेद समझ में आया है और अज्ञान उसे ज्ञानी अज्ञानी और ज्ञानी का भेद सहज में समझ में आ सकता है, सहज में उसको ज्यादा परिश्रम लेना नहीं पड़ता। जिसका अज्ञान के प्रति मोह समाप्त हो गया है ऐसे ज्ञानी पुरुष को शुष्क ज्ञानी के वचन कैसे भ्रांति कर सकते हैं। जिसके अज्ञान के प्रति मोह समाप्त हो गया है, जो अज्ञान में व्यामोहित नहीं होता, अज्ञान में जो अनुभव रहित ज्ञान है वो अज्ञान है। ज्ञान तो वो है लेकिन उसमें क्या नहीं है कि स्वानुभव नहीं है। जो स्वानुभव रहित ज्ञान है वो ज्ञान कैसा भी हो शास्त्र का, उसमें ज्ञानी को मोह नहीं होता। मोह नहीं होता माने उनको वो अच्छा नहीं लगता। जहाँ मोह होता है वो अच्छा लगता है, सुहाता है, ज्ञानी को वो अच्छा नहीं लगता। ये तो बोलता है उनको ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। तो जिसका अज्ञान के प्रति मोह समाप्त हो गया है ऐसा ज्ञानी पुरुष तो ऐसा होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष को शुष्क ज्ञानी के वचन कैसे भ्रांति कर सकते हैं। ऐसे ज्ञानी को शुष्क ज्ञानी के वचन समझ में आ जाता है, वो उसमें भूल में पड़ता, भुलावा में नहीं पड़ता, वो उसको समझ में आ जाता है। किंतु सामान्य जीवों को अथवा मंद दशा और मध्यम दशा के मुमुक्षु को शुष्क ज्ञानी के वचन समान रूप दिखाई देने से दोनों ज्ञानी के वचन है ऐसी भ्रांति होना संभव है। तीन प्रकार के जीव लिए यहाँ। एक सामान्य मनुष्य जो इस विषय में कुछ समझता नहीं है, इसका विषय ही नहीं है। एक मंद दशावान मुमुक्षु है, बहुत साधारण मुमुक्षु है, और कोई मध्यम दशा वाला कुछ आगे बढ़ा हुआ मुमुक्षु है। ये तीनों को शुष्क ज्ञानी के वचन और ज्ञानी के वचन एक सरीखे दिखने से, समान रूप मैंने एक सरीखे दिखने से दोनों ज्ञानी के वचन है ऐसी भ्रांति होना संभव है, उसको भ्रांति हो जाती है। लेकिन उत्कृष्ट मुमुक्षु को प्राय ऐसी भ्रांति संभव नहीं है। उत्कृष्ट मुमुक्षु को तो समझ में आ जाता है कि नहीं ये बात अनुभव वाली बात नहीं है, कहीं न कहीं कल्पना आई जाती है। तो कल्पना है वो विपर्यास होने से वो विपर्यास को पहचान लेता है। उत्कृष्ट मुमुक्षु को प्राय वैसी भ्रांति संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के वचनों की परीक्षा का बल उसे विशेष रूप से स्थिर हो गया है। ज्ञानी के वचनों की परीक्षा करने का बल है, योग्यता है, क्षमता है, उनके पास स्थिर हो गया है, कैपेसिटी है उनके पास कि ज्ञानी के वचन कैसे होते हैं। ऐसे वचनों की परीक्षा वो कर सकता है। देखो परीक्षा बुद्धि की बात आई है, जो ज्ञानी को पहचानता है वो परीक्षा से पहचानता है, अज्ञानी को भी पहचानता है परीक्षा से पहचानता है। और जिसको परीक्षा का बल स्थिर हुआ है, मैंने अच्छा है परीक्षा बल जिसका अच्छा है, वो ज्ञानी और अज्ञानी को वाणी से पहचान लेगा, उसको पहन उत्कृष्ट मुमुक्षु पहचान सकता है, वो पहचान लेगा, क्योंकि उनको परीक्षा करने का ज्ञान बल है। परीक्षा का बल मैंने, परीक्षा कौन करता है, ज्ञान से परीक्षा होती है, तो ऐसा ज्ञान बल उसके पास है। वो नहीं है, वो उस विषय से अनजाना है, तो कैसे पहचानेगा। मैं उसको उत्कृष्ट मुमुक्षु होना जरूरी है, एक बात तो वो है। दूसरा, जहां तक ऐसी योग्यता प्राप्त न हो वहां तक उसे समझ करके कि मेरी योग्यता ही नहीं है कि मैं पहचान सकूं, तो उसे कोई जजमेंट नहीं लेना चाहिए कि ज्ञानी है या अज्ञानी है, क्योंकि क्या शायद ज्ञानी को अज्ञानी मानेगा या अज्ञानी को ज्ञानी मानेगा, तो उसको जजमेंट नहीं ले करके उसको जिज्ञासा में रहना अच्छा है। दो में से एक भी साइड नहीं पकड़ के वो जिज्ञासा में रहे, कहाँ तक जिज्ञासा में रहे कि जहाँ तक परीक्षा बल प्राप्त होए, उत्कृष्ट मुमुक्षु होए, वहाँ तक उसको जिज्ञासा में रहना अच्छा है। परीक्षा करने की कोशिश करे, परीक्षा नहीं कर सके तो मध्यस्थ रहे, मध्यस्थ रहना चाहिए। भक्ति बिना पहचान आएगी कहाँ से, बिना पहचान सही भक्ति तो आएगी नहीं। ओक संज्ञा से भक्ति करे तो इसका कोई फल तो नहीं है। भक्ति तो इसलिए की गई है, वो भी ज्ञानी के विरोध नहीं हो जाए, इसलिए विरोध में नहीं आ जाए, इसलिए तो भक्ति। भक्ति का भी क्या अर्थ रहेगा, भक्ति अंदर से तो आएगी नहीं। खुद को जब विश्वास नहीं है, तसल्ली नहीं है, प्रतीति नहीं है, खातरी नहीं है, तो आएगी भी कहाँ से, ये कोई लाई थोड़ी ना जाती है। हाँ, वो तो अंदर से आती है, पहचान होने से अंदर से आती है। हाँ, और पहचान नहीं हो तो कहाँ से आएगी। मानो कि कोई पहचान वाला करता है, उसके कोई नकल करता है, तो कोई नकल से थोड़ी सही भाव होता है, उसमें भाव तो सही होता नहीं है, और फल तो भाव का है, क्रिया का थोड़ी ना है। वो तो वैसे जिज्ञासा में रहेगा, मध्यस्थ रहेगा तो विराधना से बचेगा, मध्यस्थ रहेगा तो विराधना से बचेगा, लेकिन मध्यस्थ नहीं रहेगा और अज्ञानी को ज्ञानी मानेगा तो वहाँ वो भी जोखिम है क्या नहीं है, तो मध्यस्थता में रहने में जोखिम तो नहीं। मानो किसी अज्ञानी को बहुत से लोग ज्ञानी मानते हैं, तो कोई ज्यादा मानने से ज्ञानी हो जाता है क्या, और कोई थोड़ा मानने से ज्ञानी अज्ञानी हो जाता है क्या। किसी कोई अज्ञानी को बहुत लोग मानते हैं कि ये ज्ञानी है, इसलिए वो ज्ञानी हुआ क्या, और कोई ज्ञानी है इनको कोई नहीं पहचानते हैं इसलिए कोई वो अज्ञानी हुआ क्या, बताए क्या, ऐसा तो नहीं बनता। बात तो पहचान की बात तो प्रत्यक्षता में ही संभव है, परोक्ष वाले को तो, जो व्यक्ति परोक्ष है उसकी पहचान कैसे होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि परोक्ष व्यक्ति की पहचान हो जाए, क्योंकि पहचान तो परिचय से होती है। परिचय करें, और अपनी योग्यता को आगे बढ़ाएं। दो बात रखें, समझ में आ जाएगा। वचन में तो दो प्रकार अंतर जो मालूम पड़े तो वचन तो दोनों के एक सरीखे हो सकते हैं, और अज्ञानी भी ज्ञानी की नकल वचन से कर सकता है,
ज्यादा बढ़िया भी कर सकता है, ज्यादा बढ़िया भी कर सकता
है। हाँ, आडंबर तो वो भी ज्यादा भी कर सकता है, ज्ञानी तो आडंबर में जाते नहीं, लेकिन इसका रस कहाँ से लाएगा, आत्मरस कहाँ से आएगा उनको, आत्मरस नहीं आएगा। सब ज्ञानी की पहचान नहीं होती तो मिले नहीं मिले बराबर है, पहचान नहीं हुई तो मिले नहीं मिले क्या फर्क, अनंत बार ज्ञानी तो मिले, मिले नहीं मिले बराबर हो गया, बताओ। इसलिए पहचान आनी जरूरी है जी। गुणानुबंध का मतलब क्या, પૂર્વ કર્મ ની સાથે કર્મનો કર્મની ઉદયની સાથે આનો સંબંધ નથી, આનો સંબંધ જ્ઞાન સાથે છે, ઉદય સાથે નથી। કોઈ પૂર્વના કર્મનો મેળ હોય માટે સંયોગ થાય એમ બને, પણ સંયોગ થાય માટે ઓળખે એવું કંઈ જરૂરી નથી આમાં, કે સંયોગ થાય માટે ઓળખે એવું કંઈ જરૂરી નથી। એક જ્ઞાનીના સંયોગમાં અનેક જીવો આવે, એક જ્ઞાનીના સંયોગ તો બધા ઓળખે છે એવું તો બનતું નથી, અને એ પ્રકારનો શુભકર્મનો ઉદય તો જેટલાને સંયોગ થયો બધાને શુભકર્મનો ઉદય તો બધાને છે। જ્ઞાનીનો સંયોગ થવો, એમના ઉપદેશનો સાંભળવાનો યોગ થવો, સત્સમાગમ મળવો એ શુભ કર્મના ઉદયથી છે, એ પ્રકારના શુભ કર્મનો ઉદય હોય છે, એ વિશિષ્ટ પ્રકારનો શુભ કર્મનો ઉદય છે, એમાં કોઈ સવાલ નહીં। પણ ઓળખાણ થવી એથી એક સ્વતંત્ર ચીજ છે, એમ કેવું છે, કેમ કે એવો શુભ કર્મનો ઉદય અનેક જીવોને હોય છે એક સાથે, છતાં એ બધા ઓળખતા નથી, કોક જ ઓળખે છે, કોઈક જ ઓળખે છે, અને એ યોગ્યતાને આધારિત છે, સંયોગને આધારિત નથી, શુભકર્મના ઉદયને આધારિત નથી, પણ એ જીવની યોગ્યતાને પાત્રતાને આધારિત છે। એટલા માટે આપણે 674 નો પત્ર વાંચ્યો, આ 679 છે ને, 674 માં એ વાત હતી, કાઢો ફરી નહીં નહીં નહીં। ઋણાનુબંધ તો પૂર્વકર્મનો અનુબંધ થયો, ઋણાનુબંધ છે એ પૂર્વકર્મનો સંબંધ થયો, પૂર્વકર્મનો સંબંધ કયો કે શુભ કર્મનો ઉદય કયો, પૂર્વકર્મનો સંબંધ કહો કે શુભ કર્મનો ઉદય કહો, બીજું શું છે, એથી વધારે શું છે, કે એ પ્રકારના શુભ કર્મનો ઉદય છે બસ। શુભકર્મનો ઉદય જડમાં આવ્યો, ઓળખાણ જ્ઞાનમાં આવે છે, એક જડ છે અને એક ચૈતન્ય છે, આટલો ફરક છે આની અંદર। કર્મનો ઉદય જડમાં આવે છે, ઓળખાણ જ્ઞાનમાં આવે છે, જ્ઞાન ચૈતન્યમાં છે, ઉદય જડમાં છે, જડ ચૈતન્ય સ્વભાવથી જ ભિન્ન છે। હિન્દીમાં 571 પાનું છે, 501 સાત ઉપરથી છઠ્ઠી લીટી છે. તથાપિ સચ્ચી પહેચાન તો દ્રઢ મુમુક્ષુતા કે પ્રગટ હોને પર, દ્રઢ મુમુક્ષુતા પ્રગટ હોવે. દ્રઢ મુમુક્ષુતા કિસકો હોતી હૈ? પૂર્ણતા કે લક્ષ્ય વાલે કો. દ્રઢ મુમુક્ષુતા પ્રગટ હોને પર તથારૂપ સત્સમાગમ સે પ્રાપ્ત હોય ઉપદેશ કા અવધારણ કરને પર. તો જિસકો દ્રઢ મુમુક્ષુતા હોતી હૈ વો ક્યા કરતા હૈ કે જો જ્ઞાની સે જો ઉપદેશ ઉનકો મિલતા હૈ ઉનકો વો ફોરન શીઘ્ર તરત અમલીકરણ મેં જાતા હૈ. એસી યોગ્યતા એ દ્રઢ મુમુક્ષુતા વાલે કો હોતી હૈ કે ઉપદેશ કો અંગીકાર કર લેતા હૈ, તુરંત અમલ મેં મૂકતા હૈ, યા અમલીકરણ કરને કા પ્રયાસ મેં આ જાતા હૈ, દેર નહીં લગાતા. એસી પાત્રતા ઉસમેં હોતી હૈ. તો એસા પ્રાપ્ત હુએ ઉપદેશ કા અવધારણ કરને પર ઓર અંતરાત્મ વૃત્તિ પરિણમિત હોને પર જીવ જ્ઞાની યા વિતરાકો પહેચાન સકતા હૈ. એ અંતરાત્મ વૃત્તિ પરિણમિત હોને પર વો ક્યા બાત હૈ? અંતરાત્મ વૃત્તિ કા સદભાવ વો ઇસકા પરિણમન હૈ. અંતરાત્મ વૃત્તિ કા સદભાવ માને બહિરાત્મ વૃત્તિ કા અભાવ. યહાં સે યે બાત સમજ મેં આ જાયેગી. જો બહિરાત્મ વૃત્તિ હૈ વો બાહ્ય પદાર્થ કો આત્મા સમજતા હૈ. જૈસે કે કિસી કો બાહ્ય જ્ઞાન હોતા હૈ ઉસકી ઉસકો મહિમા આયેગી, ઓહો કિતના જ્ઞાન હૈ, બહોત જ્ઞાન હૈ, એ શાસ્ત્ર કા જ્ઞાન હૈ, વો શાસ્ત્ર કા જ્ઞાન હૈ, ઉસકા જ્ઞાન હૈ. ઓર બહાર મે જો ત્યાગ જડ પદાર્થ કા હૈ ઉસકી ઉસકો મહિમા આયેગી. જ્ઞાન ભી હૈ ઓર ત્યાગ ભી હૈ, લેકિન દોનો બાહ્ય હૈ આત્મા સે. યહાં સે જ્ઞાની કા માપ નાપ કભી નિકલતા નહીં હૈ. જ્ઞાની કા નાપ જ્ઞાની કે જ્ઞાન સે નિકલતા હૈ જો અંતરાત્મ વૃત્તિ રૂપ હોતા હૈ. તો જો જ્ઞાન અંતર્મુખ વૃત્તિ વાલા હોતા હૈ ઉસી જ્ઞાન કી પહેચાન આ જાતી હૈ તો સમજ સકતા હૈ કે જ્ઞાની હૈ. વરના ક્યા હોગા કે અનાદિ સે બહિરાત્મ વૃત્તિ તો હૈ હી, તો બાહ્ય ચિહ્નો સે, બાહ્ય લક્ષણો સે, બાહ્ય પરિસ્થિતિ સે, બાહ્ય મેને જો આત્માથી બાહ્ય હૈ. એક સૂક્ષ્મ જ્ઞાન ભી આત્માથી બાહ્ય હૈ ઓર બાહ્ય ત્યાગ ભી આત્મા સે બાહ્ય, આત્મા સે તો બાહ્ય હૈ. તો બાહ્ય ચિહ્ન સે, બાહ્ય પદાર્થ સે જિસકો મહિમા આઈ ઉસકો અંતરાત્મ વૃત્તિ કી પહેચાન નહીં હોગી. દોનો પ્રતિપક્ષ મેં હૈ, ઇસલિયે કભી એસે પૂર્વગ્રહ સે પહેચાનને મેં નહીં જાના હૈ કે ઉનકા ત્યાગ કિતના હૈ, ઉનકો કિતની કિન કિન શાસ્ત્રો કા જ્ઞાન કિતના હૈ, કિતના વિશાળ જ્ઞાન હૈ. કે જ્ઞાન કી વિશાળતા યહાં નહીં કાર્ય કરતી, જ્ઞાન કી ગહેરાઈ ઉસમેં કામ કરતી હૈ. જ્ઞાન કી વિશાળતા જ્ઞાન કે સૂક્ષ્મ પર આધારિત હૈ, જબકે જ્ઞાન કી ગહેરાઈ જ્ઞાન કા અનુભવ પર આધારિત હૈ. દો અલગ અલગ ફેક્ટર હૈ, ઉનકી પહેચાન હોને સે સચ્ચી પહેચાન જ્ઞાની કી આતી હૈ. ઓર ઉનકી પહેચાન કબ આતી હૈ કે જીવ દ્રઢ મુમુક્ષુ હોતા હૈ ઓર જો અપના હિત કા ઉપદેશ મિલતા હૈ ઉસકો અંગીકાર કરના, અવધારણ કરના, અમલ કરના ઉસકે લિયે જો એકદમ તૈયારી વાલા હોતા હૈ, એસી યોગ્યતા વાલા હોતા હૈ, ઉનકો અંતરાત્મ વૃત્તિ આતી હૈ ઓર વો અંતરાત્મ વૃત્તિ સે જ્ઞાની કી અંતરવૃત્તિ કો પહેચાન લેતા હૈ. અપની અંતરાત્મ વૃત્તિ સે જ્ઞાની કી અંતરાત્મ વૃત્તિ કો પહેચાનતા હૈ. એ ઇન્ટરલિંક હૈ. दोनों के बीच में, वरना पहचान नहीं होती, ऐसी योग्यता में पहचान, वो उत्कृष्ट मुमुक्षु है। और उत्तम मुमुक्षु के लिए एक बहुत सुंदर व्याख्या कृपालु देव ने 335 नंबर के पत्र में निकली है, वो बहुत आसान बात है, यहाँ से बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसानी से, सरलता से, सहजता से आ जाए, ऐसा भी एक रास्ता कृपालु देव ने खोल दिया है। 335 पत्र है, पृष्ठ संख्या मेरे में है 327 में, उन्हें पत्र के अंतिम भाग में, जो मात्र ज्ञानी को चाहता है वही पहचानता है। क्या? जिसको ज्ञानी की चाह है कि मुझे ज्ञानी चाहिए, चाह में क्या चाहिए, तो जो मात्र ज्ञानी को चाहता है, एक मात्र शब्द पर यहां गहराई है, जोइए, चाहे इतने मारे जोइए, मारे ज्ञानी जोइए, मात्र ज्ञानी जोइए ने बीजू काई न जोइए, एनु नाम मात्र। मात्र एटले शू કે એ જોઈએ ને બીજું કાંઈ ન જોઈએ, એની પાછળ સમજણ છે કે જ્ઞાની વગર જ્ઞાન મળવાનું નથી ને એના વગર ઉદ્ધાર નથી આપણો, તો મારે જ્ઞાની જોઈએ જોઈએ ને જોઈએ, અને મારે જ્ઞાની જોઈએ ને બીજું કાંઈ ન જોઈએ। જો માત્ર જ્ઞાની કો ચાહતા હૈ વો પહેચાનતા હૈ, जो चाहता है वही पहचानेगा, और पहचानेगा वो उसको भजेगा कि ये मेरे परमेश्वर है, ये मेरे प्रभु है। पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभु से, सब आगम भेद सो पूर्व से, ये हालत में वो आ जाएगा। और वह उत्तम मुमुक्षु जानने योग्य है, वो बजता है वही वैसा होता है भविष्य में, माने वो ज्ञानी हो जाएगा, जो पहचानेगा वो ज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि पहचाने वो भजेगा, वो भजेगा वो ऐसा हो जाएगा। और वह उत्तम मुमुक्षु जानने योग्य है, उसको जगत में ज्ञानी मिल गया तो अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि इनको सर्वस्व मिल गया हो। क्या? तो मुझे सर्वस्व मिल गया, और जिसको परमेश्वर मिल गया उसको क्या चाहिए फिर? परमेश्वर बुद्धि हो जाती है तो फिर उनको क्या चाहिए? कि कुछ नहीं चाहिए, तो उसको भजेगा बस। उनका सुभाग भाई का लक्ष्य कहाँ रहता है? क्यों रोज चिट्ठी लिखते थे? तो उनका जीव ही वहां है, शरीर इधर है जीव उधर है, ऐसा बन जाता है, तो उनको वही लक्ष्य रहता है उनका। वो जहां से अपना हित होता हो, जिससे हमें सुख मिलता हो, उसका लक्ष्य नहीं रहता है संसार में, उसका ही लक्ष्य रहता है संसार में। लक्ष्य रखना नहीं पड़ता है, उसको सहज रहता है, उसी को हम खिंचाव कहते हैं, उसी को हम प्रेम कहते हैं, उसी को हम आसक्ति कहते हैं, लगाव कहते हैं, जो कुछ भी कहते हैं वो ही है, क्यों? सुख का कारण है। तो उनके समझ में वो बात आ जाती है, ये मेरा परम सुख का, परम सुख धाम, परम पुरुष प्रभु सदगुरु, परम ज्ञान सुख धाम, परम ज्ञान भी वही है और सुख धाम भी, मेरा सुख धाम भी वही है, दूसरा ज्ञान मेरे पास नहीं है, वही परम ज्ञान है। जो सदगुरु का ज्ञान हुआ वही परम ज्ञान है और वही सुखधाम है। मेरा सुखधाम तो वही, अब कोई दूसरा सुखधाम मुझे खोलने को कोई जरूरत नहीं है। संत में, परमेश्वर में और आत्मा में भेद नहीं रहता, क्या तीनों एक हो जाता है, उसी को कहने में आते हैं एक भाव। बस वो तीर गया उनको। अभी कोई संसार में कोई दूर लंबा संसार उसको हो सकता नहीं।
जिसके अज्ञान के प्रति मोह समाप्त हो गया है वैसे ज्ञानी पुरुष को शुष्क ज्ञानी के वचन कैसे भ्रांति कर सकते हैं, किंतु सामान्य जीवों को अथवा मंद दशा और मध्यम दशा के मुमुक्षु को शुष्क ज्ञानी के वचन समान रूप दिखाई देने से दोनों ज्ञानी के वचन हैं ऐसी भ्रांति होना संभव है। उत्कृष्ट मुमुक्षु को प्रायः वैसी भ्रांति संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के वचनों की परीक्षा का बल उसे विशेष रूप से स्थिर हो गया है, विशेष रूप से स्थिर हो गया है। खास प्रकार की योग्यता उत्पन्न होती है। मुझे ज्ञानी ही चाहिए, मात्र ज्ञानी चाहिए, ऐसा विवेक जिसको आया। विवेक कहां से आया कि इसके बिना तो काम मार मेरा होने वाला नहीं है, तो मुझे चाहिए। ऐसे विवेक में ये योग्यता उत्पन्न होती है पहचानने के। परम भावना और परम जिज्ञासा ज्ञानी की प्राप्ति की। परम मैंने बहुत उत्कृष्ट चरम सीमा के, ये रही तो योग्यता सहज मात्र में आती है, सहज में आ जाएगी। बस उतना ही करना है, योग्यता आने में देर नहीं लगेगी। योग्यता का एक बहुत सुविधा है, दूसरी दूसरी सब बातें में देर लगती है, योग्यता में देर नहीं लगती, पात्रता में देर नहीं लगती। क्यों कि वो अनकंडीशनल प्राप्त होने वाली अवस्था है, पर्याय है। अनकंडीशनल मैंने क्या कि पूर्व पर्याय की कोई शर्त नहीं उसमें कि ऐसा हो तो ऐसा हो, पात्रता में वो बात नहीं है। अभी पात्रता नहीं है और कुछ मिनटों में पात्रता आ सकती है, पात्रता के योग्य भाव हो जाए तो। दूसरे ऊपर की अवस्था में ऐसा नहीं है, वो अपने स्वाध्याय में लेते हैं कि केवल ज्ञान उत्कृष्ट पर्याय है लेकिन मुनि दशा की शर्त है उसमें। भावलिंग मुनि दशा आए बिना, छठे सातवें गुण स्थान में आए बिना किसी को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मुनि दशा में कंडीशन है सम्यक दर्शन का, बिना सम्यक दर्शन कोई मुनि नहीं होते, चाहे दीक्षा धारण कर ले। और सम्यक दर्शन के पर्याय को आगे स्वरूप निश्चय है, स्वरूप निश्चय, स्वरूप की पहचान हुए बिना वो दूसरा संकेत हुए बिना तीसरा संकेत होता नहीं। और दूसरा संकेत को कंडीशन है पहला संकेत की, सत्पुरुष की पहचान हुए बिना स्वरूप की पहचान होती नहीं। और सत्पुरुष की पहचान योग्यता दृढ़ मुमुक्षुता को धारण किए बिना होती नहीं।
लेकिन दृढ़ मुमुक्षुता कब आती है कि उसके लिए कोई शर्त नहीं है। अब भी आपको अपना आत्मकल्याण का निर्धार करना हो कि मेरे को संसार नहीं चाहिए, किसी कीमत पे मुझे आत्मकल्याण कर लेना है एट एनी कॉस्ट, उनको उसी वक्त वो पात्रता पैदा हो जाती है। एक तो देर लगती नहीं और आगे की कोई शर्त नहीं, आगे की पर्याय कितनी भी खराब हुई हो, चलो आगे वाली पर्याय कितनी भी खराब हो चुकी हो, भले ही हो गई हो, वो भी उसमें आड़े नहीं आती। वर्तमान में ये भाव हुआ कि मुझे मेरा आत्मकल्याण किसी भी कीमत पे कर ही लेना है, अभी अभी ही करना है, मुझे अभी दूसरा कुछ नहीं करना है, आत्मकल्याण ही करना है, ये पूर्णता का लक्ष्य, पूर्ण शुद्धि या दृढ़ मुमुक्षुता का निर्धार किया, उसी वक्त पात्रता का जन्म हो गया। जाओ, ये वितराग का मार्ग इतना सुंदर है कि जो फाउंडेशन का स्टोन है वो मुफ्त में मिलता है, ऊपर ऊपर की पर्याय के लिए कीमत देनी पड़ती है, जबकि जो नींव का पत्थर है वो मुफ्त में मिलता है। मुफ्त में मैंने दूसरा कुछ भी आगे हो वो भी प्राप्त हो जाता है, इतनी सुविधा है इस मार्ग में। इसके बिना अनंत काल निकला है, इसके बिना अनंत काल निकला है, ऐसा नहीं किया, ऐसा निर्धार नहीं किया। क्यों निर्धार नहीं किया कि पहले आठ वो करना है, पहले वो करना है, पहले वो करना, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, थोड़ा वो कर लो, ये काम हो जाए ना फिर करेंगे, वो काम हो जाए ना फिर करेंगे, जिसको अभी नहीं करना है उसको कभी नहीं करना है, नियत बराबर नहीं है उसका। ज्ञानी जान लेता है कि उसकी नियत बराबर नहीं है, और जिसको अभी करना है उसको कौन रोक सकता है। 128 पत्र में क्या लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, कितने भी दुख आ पड़ो, कितने उपसर्ग, लोग परेशान भी करेंगे, उपसर्ग मैंने लोग परेशानी करेंगे, कितने भी परेशानी हो जाए, कितना भी उपसर्ग हो, कितने भी परेशान हो, कितनी आधी व्याधि उपाधि हो, अरे आयु पूरा होने की तैयारी हो, हमको तो यही करना है बस। जगत में कोई ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि उनकी योग्यता पैदा होने में कोई रोक सके, उसी वक्त उसकी पात्रता जन्म लेती है। इतना निर्धार होना चाहिए, उतने भाव में पूरी तैयारी आ जाना चाहिए, फिर कोई आपत्ति नहीं है, आगे मार्ग सरल है। ऐसे जीव के लिए सत सगम सुगम है, सत सरल है, और सर्वत्र इनकी उनको प्राप्ति हो जाती है, कहीं भी हो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ये पात्रता का विषय बहुत सुविधा वाला है और अनकंडीशनल मिलता है, और उसी बेस पे, उसी नींव पे पूरा सिद्ध पद पाने की तैयारियां चालू हो जाती है। वो आगे बढ़े करके सिद्ध पद में आ जाएगा। इतनी मजबूत बात है, दृढ़ता बहुत होती है उसमें, ये कच्चे पोचे का काम नहीं है, और जिसकी दृढ़ता होती है उसका ही काम है, और उसी दृढ़ता पे सिद्ध पद विराजमान होता है। अब जो पीछे का पैराग्राफ है वो भूतकाल में हुए ज्ञानी की पहचान के विषय में है। पहचान तो प्रत्यक्ष होती है, लेकिन जो ज्ञानी विशेष रूप से विचिक्षण रूप से होते हैं, ऐसे ज्ञानी विशेष प्रज्ञावान, ऐसा शब्द लिया है यहाँ, कोई ज्ञानी विशेष प्रज्ञावान होते हैं तो भूतकाल में हुए ज्ञानी के वचन से भी वो पकड़ते हैं कि वो ज्ञानी हो गया है, तभी ऐसे बात किया उसने, ऐसा भी एक बात बनता है। बोलिया है पूर्व काल में ज्ञानी हो गए हो और मात्र उनकी मुखवाणी रही हो। मुखवाणी माने क्या? दूसरों ने संपादन किया वो बात नहीं, खुद की वाणी रह गई हो, जे बोला वो ही वाणी रही हो, कन्वर्ट हो गया वो बात नहीं, उसकी मूल वाणी मुखवाणी रही हो, तो भी वर्तमान काल में ज्ञानी पुरुष यह जान सकते हैं, ये मुमुक्षु का काम नहीं है, ये ज्ञानी पुरुष जान सकते हैं कि यह वाणी ज्ञानी पुरुष की है, ये ज्ञानी पुरुष जान लेते हैं। क्योंकि हर बात में कारण दिया है, सिर्फ प्रतिपादन नहीं किया है, कारण देते रहते हैं कि क्यों ऐसा क्यों होता है। क्योंकि रात्रि दिन के भेद की तरह अज्ञानी ज्ञानी की वाणी में आशय भेद होता है। कहाँ से वो पकड़ते हैं? कहने वाले का आशय वो पकड़ लेते हैं। अज्ञानी की वाणी में वो आशय नहीं होता है जो आशय ज्ञानी की वाणी में होता है। एक जगह आशय रहता है, आशय का सद्भाव है ज्ञानी की वाणी में, जबकि अज्ञानी की वाणी में आशय का अभाव होता है। ये बड़ा अंतर है, सद्भाव और अभाव का बहुत बड़ा अंतर है। वो पकड़ लेता है, ज्ञानी उसको पकड़ता है, क्यों कि खुद को आशय ग्रहण हुआ है और परिणमन हुआ है, और वर्तमान परिणमन में वो मौजूद है, इससे वो पकड़ लेते हैं। और आत्मदशा के तारतम्य के अनुसार आशय वाली वाणी निकलती है। इसमें क्या है? आत्मदशा, ज्ञानी की आत्मदशा में भी तारतम्यता होती है। तारतम्य मैंने क्या? कि जैसे कोई बहुत स्पिरिट वाली वाणी ज्ञानी की होती है, उसकी दशा एकदम पावरफुल होने से वाणी भी उसकी पावरफुल निकलेगी, तो आत्मदशा के तारतम्य के अनुसार आशय वाली वाणी निकलती है। हाँ, सुकानी जी की वाणी में, कृपालु देव की वाणी में वो दोनों स्पिरिट है, एकावतारी है ना, इसलिए उनका आशय, उसको एक स्पिरिट ही अलग होता है, इनका पुरुषार्थ वो छिपा नहीं रहता, उसका जो आशय है उसमें जो जोर है, जो बल है, वो छिपा नहीं रहता, वो तारतम्य अनुसार वाणी निकलती है। वह आशय वाणी पर से वर्तमान ज्ञानी पुरुष को स्वाभाविक दृष्टिगत होता है। वर्तमान जो ज्ञानी पुरुष है, वर्तमान ज्ञानी पुरुष क्या लिया और क्यों लिया? अवतरण चिन्ह में लिया, क्यों? विशेष प्रज्ञावान ज्ञानी लेना है। मैं कैसे ऐसी प्रज्ञा की विशेषता नहीं हो तो कितने ज्ञानी ऐसा होता है कि इसका इतना उपयोग लंबाता नहीं है, और जो विशेष प्रज्ञावान होता है वो सहज मात्र में उनको तारतम्यता पकड़ने में आती है और वो माप नाप लेते हैं, बहुत तीव्र ज्ञान दशा में लिखे हुए ये वचन हैं। क्या मालूम पड़ता है? कि ये वचन जो निकले हैं वो तीव्र ज्ञान दशा में से निकले हुए वचन हैं, ऐसी तारतम्यता को वो नाप लेते हैं। हाँ, मस्ती में वो निकलते हैं, बहुत मस्ती में आते हैं। वह आशय वाणी पर से वर्तमान ज्ञानी पुरुष को
स्वाभाविक दृष्टिगत होता है और कहने वाले पुरुष की दशा का तारतम्य ध्यानगत होता है। कहने वाले की दशा कितनी थी वो भी उसको पकड़ने में आता है, वाणी से पकड़ने में आता है, इनकी दशा को वो पकड़ लेते हैं। वो कृपालु देव ने लिखा कि कुंद कुंदाचार्य का ज्ञान ऐसा था, कुंद कुंदाचार्य आत्म स्वभाव में बहुत स्थिर थे। क्या लिखा है? श्री कुंद कुंदाचार्य आत्म स्वभाव में बहुत स्थिर थे। वो कुंद कुंदाचार्य 2000 साल पहले हुए और कृपालु देव को अभी कैसे ज्ञान हो गया कि विशेष प्रज्ञावान पुरुष होते हैं, उनको पूर्व काल में जो ज्ञानी हुए उनकी वाणी से वो ज्ञानी थे मालूम पड़ते हैं, उतना ही नहीं वो आत्म स्वभाव में उसकी स्थिरता कितनी थी वो भी मालूम पड़ता है। और समय सार में ऐसी बात है तो वहां से वो ख्याल में आ गया कि बहुत आत्म स्वभाव में स्थिर हुए बिना ऐसी वाणी निकलती नहीं है। तो ऐसे आत्म स्वभाव में बहुत स्थिर है ऐसे जानने वाला ज्ञानी समय सार का मूल्यांकन करता है, दूसरा कौन करेगा समय सार का मूल्यांकन? ये समय सार क्या चीज है? बहुत आत्मस्थिरता में से निकले हुए वचन है। कहने वाले पुरुष की दशा का तारतम्य ध्यानगत होता है। यहाँ जो वर्तमान ज्ञानी शब्द लिखा है वह किसी विशेष प्रज्ञावान प्रगट बोध बीज सहित सम्यक दर्शन सहित पुरुष के अर्थ में लिखा है। ज्ञानी के वचनों की परीक्षा यदि सर्व जीवों को सुलभ होती तो निर्वाण भी सुलभ ही होता, क्योंकि ज्ञानी पुरुष की परीक्षा करने वाले निर्वाण में चले जाते हैं, वो खुद ज्ञानी बन करके उसका निर्वाण हो जाता है। अगर वो बात सुलभ होती तो निर्वाण भी सुलभ होता, वो बात उतनी सुलभ नहीं है। भले ही दुर्लभ हो लेकिन हमारे लिए दुर्लभ नहीं रहनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए। इतनी तैयारी से हमें हमारी योग्यता को प्रकट करना चाहिए, ये बात इसमें से निकलती है। दुर्लभ है करके ऐसा नहीं रहना क्या करें बहुत दुर्लभ है, कईयों को नहीं मिलता है, हमको भी नहीं समझ में आए तो क्या हो गया, ऐसा नहीं लेना है। यहाँ से प्रेरणा लेनी है कि हमको दूसरे के लिए भले ही दुर्लभ हो हमारे लिए ये सुलभ हो जानी चाहिए बात। ऐसा उल्लासित वीर्य से आगे बढ़ना है, वो डिसअपॉइंट करने के लिए बात नहीं है, उल्लास बढ़ाने के लिए बात है। यहाँ ये विषय पूरा होता है ज्ञानी अज्ञानी के संबंध में। आगे जो बात है वो सुभाग भाई के दूसरे दूसरे जो प्रश्न थे उनके उत्तर रूप बात है, तो विशेष